आठवां भाग साकेत का प्रकृति चित्रण। प्रकृति आदिकाल से ही मानव की सहचरी रही है। मानव के लिए यह अजस्र प्रेरणा सूत्र रही है। इसीलिए प्रकृति का काव्य से अटूट संबंध है। हिंदी साहित्य में आरंभ से ही प्रकृति निरूपण होता आया है। वीरगाथा काल में प्रकृति अलंकार विधान एवं उद्दीपन के रूप में प्रयुक्त हुई है। भक्ति काल में राधा कृष्ण विषयक श्रृंगारिक उद्दीपनों एवं अप्रस्तुत योजना में उसका प्रयोग है, किंतु स्वतंत्र स्थान नहीं दिया गया है। रीति काल में कुछ कवियों को छोड़कर प्रायः प्रकृति के प्रति उत्साह का अभाव मिलता है। केवल ऋतु वर्णन के रूप में 12 मासों में उसके दर्शन होते हैं। भारतीय युग में भक्ति की पुनरावृत्ति एवं देश प्रेम के कारण प्रकृति को पुनः अपनाया गया है, परंतु उसमें भी वास्तविक उल्लास का अभाव ही पाया जाता है। द्विवेदी युग में प्रकृति पर कवियों द्वारा कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया है। छायावादी कवियों ने प्रकृति में चेतना को स्वीकार कर उसका मानवीकरण किया है। आधुनिक काव्यों में प्रकृति का चित्रण निम्न प्रकार से होता है। पहला आलंबन रूप में, दूसरा उद्दीपन रूप में, तीसरा अलंकार योजना रूप में, चौथा संवेदनात्मक रूप में, पांचवा वातावरण निर्माण के रूप में, छठवा प्रतीकात्मकता के रूप में, सतवा मानवीकरण के रूप में। प्रकृति के विभिन्न रूपों के संदर्भ में जब हम साकेत पर विचार करते हैं तो पाते हैं कि उसमें अनेक रूपों में प्रकृति का चित्रण किया गया है। इसमें प्रतीक का उद्दीपन रूप विशेष रूप से मिला है, क्योंकि उर्मिला का विरह मूल में जो अनुप्राणित है। साकेतकार ने मानव जीवन के अन्य क्रियाकलापों का तादाद में प्रकृति के साथ किया है। डॉक्टर उमाकांत के अनुसार मैथिली शरण गुप्त शुद्ध प्रकृति चित्रण बहुत कम करते हैं। वास्तव में वे मानवीय संबंधों के कवि हैं और उनकी कविता का मुख्य विषय मानव ही है। मानवेतर सृष्टि की और उनका ध्यान नहीं जाता। प्रकृति के प्रति गुप्त जी के मानस में छायावादी कवि का सा सहज अनुराग नहीं है, अतएव उनके यहाँ आलंबन रूप में प्रकृति वर्णन का प्रायः अभाव है। वैसे गुप्त जी प्रकृति के विशेष अनुरागी नहीं हैं। साकेत ने प्रकृति के विभिन्न रूपों को हम देख सकते हैं। पहला आलंबन रूप में, जब प्रकृति का वर्णन यथात तथ्य रूप में किया जाता है तो उसे प्रकृति का आलंबन रूप कहा जाता है। प्रकृति के इस रूप में कवि प्रकृति को भावनाओं का आधार बनाता है। प्रकृति की स्वतंत्र सत्ता होती है। आधुनिक काल में कवियों की दृष्टि प्रकृति के इस रूप पर अधिक गई है। गुप्त जी ने साकेत में प्रकृति के इस रूप को अनेक स्थान पर चित्रित किया है। मूंदे अनंत ने नयन धार वह झांकी, शशि खिसक गया निश्चित हंसी हंसी बाकी, द्विज चहक उठे हो गया नयन उजियारा, हाटक पट पहने दीख पड़ी गिरिमाला, सिंदूर चढ़ा आदर्श दिनेश उदित था, जन जन अपने आप को आप निहार मुदित था। एक और चित्र द्रष्टव्य है। आकाश जाल सब ओर तना, रवि तनुवाय है आज बना, करता है पद प्रहार वही, मक्खी भी भिन्ना रही मही। इस प्रकार अनेक चित्र आलंबन रूप में कवि की तुलिका में उभरे हैं, जो रमणीय और स्वाभाविक हैं। उद्दीपन के रूप में, भावनाओं को अधिक उद्दीप्त करने के लिए प्रकृति का चित्रण उद्दीपन रूप में होता है। उर्मिला के विरह को उद्दीप्त करने के लिए यह साकेत में प्रयुक्त हुआ है। मध्ययुगीन कविता में प्रकृति अपने उद्दीपन रूप में यथेष्ट रूप से चित्रित हो चुकी थी। गुप्त जी ने परंपरागत प्रकृति के इस रूप को नई दिशा दी। जैसे कुलिस किस पर कड़क रहे हैं, आली तो यद तड़प रहे हैं, कुछ कहने के लिए लता के अरुण अधर वे फटक रहे हैं, मैं कहती हूँ रहे किसी के हृदय वही जो धड़क रहे हैं, अटक अटक कर भटक भटक कर भाव वही जो भड़क रहे हैं। कुलिस का गर्जन आज भय को जन्म दे रहा है। लता में भी उसे अपने को भड़कते हुए भाव दृष्टिगोचर होते हैं। वीरा की प्रथा इतनी तीव्र है कि भाव होठों पर आते अवश्य हैं, किंतु भाषा में प्रस्फुटित नहीं होते। एक अन्य उदाहरण, बिहग उड़ना भी ये ही बुद्ध भूल गए अये, यदि अब इन्हें छोड़ूं तो और निर्दयता दए, परिजन इन्हें भूले ये भी उन्हें सब हैं बहे, बस अब हम ही साथी संगी सभी इनके रहे। प्रकृति की मनोरम छटा और मिला के संयोग स्मृतियों को उद्दीप्त कर देती है, उसे लक्ष्मण का सहवास याद आने लगता है। मैं निज आलिंद में खड़ी थी सखी एक रात, रिमझिम बूंदे पड़ती थी छटा छाई थी, गमक रहा था केतकी का गंध चारों ओर, झिल्ली झनकार वही मेरे मन भाई थी, करने लगी मैं अनुकरण स्वनुपरों से, चंचलता थी चमकी घनाली गहराई थी, चौंक देखा मैंने चुपकोने में खड़े थे प्रिय, माई मुख लज्जा उसी छाती में छिपाई थी। तीसरा, अलंकार योजना रूप में, इसमें गुणों के रूप में प्रकृति के उपादानों का चित्रण किया जाता है। साकेत में प्रकृति के इस रूप का प्राचुर्य है। लाल वस्त्र पहने हुए उर्मिला को मूर्तिमती उषासी बताया गया है। प्रिय के नेत्रों अधरों के वर्णन के लिए कवि ने रूपातिशयोक्ति अलंकार के माध्यम से प्रकृति का गोरूप उपस्थित किया है, वह प्रशंसनीय है। निरख सखी ये खंजन आए, फेरे उन मेरे रंजन ने इधर नयन इधर मन भाए, फैला उनके तप का आतप मन से सर सरसाए, घूमे वे इस ओर वहाँ वे हंस यहाँ उड़धाए, करके ध्यान आज इस जन का निश्चय वे मुस्काए, फूल उठे हैं कमल अधर के ये बंदूक सुहाए, स्वागत स्वागत शरद भाग्य ने भाग्य के मैंने दर्शन पाए, नभने मोती वारे लो ये अश्रु अर्घ भर लाए। चौथा, संवेदनात्मक रूप में, प्रकृति का वह रूप जो भावनाओं को उद्दीप्त करने के जगह उसे सांत्वना प्रदान करता है, उसे संभाव वही संवेदनात्मक रूप होता है। साकेत में गुप्त जी ने इसका प्रयोग कई स्थलों पर किया है। वह कोयल जो कूक रही थी आज हूंक भरती है, पूर्व और पश्चिम की लाली रोष वृष्टि करती है, लेता है निश्वास समीरण सुरभि धूल चरती है, उबल सूखती है जलधारा यह धरती मरती है। इसमें प्रकृति के सारे उपादान उर्मिला के प्रति संवेदना की द्योतक हैं। उर्मिला की प्रकृति के प्रति सहानुभूति रखती है। सखी न हटा मकड़ी को आई है वह सहानुभूति वसा, जालगता मैं भी तो हम दोनों की यहाँ समान दशा। पांचवा, वातावरण के निर्माण के रूप में, वातावरण तो भावपूर्ण उल्लासपूर्ण सुख दुख के रूप में सजीव करने हेतु इस रूप का चित्रण होता है। साकेत में प्रकृति का यह रूप कई स्थलों पर चित्रित है। संयोग चित्रों का प्रभाव उत्पादक बनाने के लिए प्रकृति के उल्लास रूप की एक छटा दस्तव्य है बनी साकेत नागरी ना परी और सात्विक भाव से सरयू भरी, आस पास लगी वहाँ फुलवारियाँ हंस रही हैं खिलखिला कर क्यारियाँ। प्रतीकात्मक रूप में इसमें बाह्य साम्य, छठवां, प्रतीकात्मक रूप में इसमें बाह्य साम्य की उपेक्षा आंतरिक साम्य पर बल दिया जाता है। प्रकृति के उपादानों का प्रयोग जीवन के विविध रूपों को इंगित करने हेतु प्रकृति प्रतीक रूप में होता है। साकेत में प्रतीक योजना अपने स्निग्ध एवं सुंदर रूप में मुखर हुई है। पहला, अरे सुरभ जा लौट जा अपने अंग सहेज, तू है फूलों में पली यह कांटों का सेज। दूसरा, जीवन के सूने प्रभात में आंख खुली जब मेरी, हरी भूमि के पात पात पर मैंने हृदय गति हेरी। सातवां, मानवीकरण के रूप में इसमें प्रकृति को मानव के रूप में दिखाया जाता है और उसकी भावानुकूल सजीव सत्ता हो जाती है। साकेत में प्रकृति का यह रूप अनेक स्थलों पर देखने को मिलता है। रात्रि और उषा को नायिका के रूप में प्रस्तुत किया गया है। वेशभूषा साज उषा आ गई, कमल पर मुस्कुराहट छा गई, पक्षियों की चहचहाहट हो उठी, चेतना की अधिक आहट हो उठी। आठवां, उपदेश ग्रहण रूप में प्रकृति के माध्यम से मानव को उपदेश देने हेतु प्रकृति का सहारा लिया गया है। साकेत में इस रूप का अभाव है, कुछ उदाहरण ही मिलते हैं। पास पास में उभ्य वृक्ष देखो आहा, फूल रहा एक दूसरा झड़ रहा, है ऐसी ही बात प्रिय नरलोक का, कहीं हर्ष की बात कहीं है शोक का। साकेत में प्रकृति का प्रयोग बारहमासी के रूप में भी हुआ है। उन्होंने परंपरा का पालन किया है, लेकिन पहले के कवियों जैसा नहीं। उन्होंने ऋतुओं का निरूपण उर्मिला के दृष्टिकोण के अनुसार किया है। ग्रीष्म ऋतु का उदाहरण, आकाश जाल सब ओर तना, रवि तंतुआ है आज बना, करता है पद प्रहार वही, मक्खी से भिन्ना रही मही। निष्कर्षता यह कहा जा सकता है कि कवि की दृष्टि मानव हृदय में उठने वाली नाना रूपणी राग द्वेषमय वृत्तियों के वन प्रदेश में जितनी उलझी हुई है, उतनी बाह्य प्रकृति के रम्य रूपों में नहीं। गुप्त जी ने मानवीय संवेदनाओं एवं हृदय की गहरी अनुभूतियों को प्रकृति के साथ जोड़ा है। उर्मिला का विरह वर्णन, विरह प्रकृति का सामंजस्य पा सजीव हो उठी है। छायावादी प्रभाव के बावजूद भी गुप्त जी ने नवीनता एवं मौलिकता का इसमें समावेश कर दिया है। कवि ने सांस्कृतिक परंपरा का पालन करते हुए प्रकृति की मनोमुग्धकारी सुषमा अंकित की है, जिसमें विविधता है, स्वाभाविकता है और तन्मय कर देने की अपूर्व शक्ति है। यह भाग यहीं पर समाप्त होता है। द एंड।